नमस्कार भारत, 25 मार्च दिन सोमवार, मैं हूं वात्सल्य राय। अमेरिका के विशेष वकील मुलर को नहीं मिले 2016 चुनाव में रूस के साथ सांठगांठ के सबूत। ट्रंप बोले, गिराने की कोशिश नाकाम।
This was an illegal takedown that failed, and hopefully somebody's going to be looking at the other.
दो हिंदू लड़कियों की जबरन शादी की खबरों के बाद पाकिस्तान में धर्मांतरण पर बहस। सत्ताधारी पीटीआई के हिंदू सांसद ने कहा,
ये माजी से चलता आ रहा है फोर्स्ड कन्वर्जन का इशू। मैं बार बार कहता हूं कि इसके ऊपर स्ट्रांग लेजिस्लेशन होनी चाहिए।
और बिहार की बेगूसराय सीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को चुनौती देंगे कन्हैया कुमार। महागठबंधन में जगह नहीं मिलने पर बोले,
उनकी भी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उनके अपने राजनीतिक गुना गणित है, अब वो क्यों नहीं समझ रहे हैं ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए।
पाकिस्तान डायरी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, भूमिका राय से। अमेरिका में साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल की जांच कर रहे विशेष वकील रॉबर्ट मुलर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव अभियान टीम की रूस से कोई मिलीभगत नहीं थी। मुलर ने करीब 2 साल की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की है। पाकिस्तान में दो हिंदू लड़कियों को अगवा करके शादी कराने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इन दोनों ही लड़कियों की उम्र शादी के लिए तय न्यूनतम उम्र सीमा से कम है। उनके लापता होने के बाद जो पहला वीडियो सामने आया था, उसमें एक मौलवी दोनों की शादी करवाते दिख रहे थे। इसके बाद जो एक दूसरा वीडियो आया, उसमें दोनों लड़कियां कहती नजर आ रही हैं कि इन सब में उनकी मर्जी है। हालांकि उनके परिवार का कहना है कि उनके साथ जबरदस्ती की गई और उन्हें वापस लाया जाए। थाईलैंड में साल 2014 में तख्तापलट के बाद पहली बार मतदान हुए। चुनाव में करीब 5 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि इस चुनाव के परिणाम स्वरूप एक सैन्य समर्थक पार्टी प्रमुख राजनीतिक दल के तौर पर सामने आएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि पलांग प्रथारत पार्टी करीब 70 लाख वोट पाकर प्रमुख विपक्षी पार्टी से कुछ आगे चल रही है। ये पार्टी सैन्य समर्थक है। हालांकि ये अंतिम परिणाम नहीं है। चुनाव आयोग के चेयरमैन इत्ती पोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, चुनाव बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुए। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 90% बैलेट बॉक्सों की गिनती हो चुकी है। अंतिम परिणाम आज यानी सोमवार तक घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव के बाद मोजाम्बिक में अब खतरनाक और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। तूफान के बाद मोजाम्बिक में मलेरिया और हैजा होने का खतरा बढ़ गया है। दक्षिण अफ्रीका में आए खतरनाक तूफान के लगभग 10 दिन बाद ये चेतावनी जारी की गई है। भूमि और पर्यावरण मंत्री सेलो कोरियो का कहना है कि जैसे ही बाढ़ का पानी कम हुआ, लोगों को भोजन, आश्रय और दवाइयों की जरूरत थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बीमारियों से निपटने के लिए कई चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, हैजा फैलना निश्चित है और ये हम जानते हैं। ऐसी स्थिति में आप हैजा और मलेरिया नहीं होगा ऐसा सोच भी नहीं सकते। ऐसे में सरकार ने पहले ही ध्यान रखते हुए चिकित्सा केंद्र बनाए हैं। साथ ही हमारी टीम जमीनी स्तर पर भी लगातार सक्रिय है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कीनिया के एक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक को 2019 ग्लोबल टीचर के खिताब से नवाजा गया है। इस सम्मान के साथ ही उन्हें करीब 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई है। पीटर तबीची कीनिया के केरिको स्कूल में विज्ञान पढ़ाते हैं। इस सम्मान के लिए कड़ा मुकाबला था। दुनिया भर के 10,000 से अधिक प्रत्याशियों ने इसमें भाग लिया था। ये सम्मान यूएई की एक शिक्षा संस्था द्वारा दिया जाता है। संस्था का कहना है कि ये सम्मान उन शिक्षकों के काम को पहचान देना है जिन्होंने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तबीची अपनी आय का 1/4 उन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए खर्च करते हैं जो गरीब तबके से आते हैं और जिनके स्कूल के खर्च उठा पाना संभव नहीं है। फ्लोरिडा के जिस स्कूल में पिछले साल 17 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसी स्कूल के 2 छात्रों ने 1 सप्ताह के भीतर खुदकुशी कर ली है। पिछले सप्ताह खुदकुशी करने वाली छात्रा के परिवार का कहना है कि उस दिन हुए हमले के बाद से वो काफी तनाव में थी और डरी हुई थी और उनका इलाज भी चल रहा था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार, भारत की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमेरिका के विशेष वकील रॉबर्ट मुलर की जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी राहत बनकर आई है। इस रिपोर्ट का सार कल अटॉर्नी जनरल ने अमेरिकी सांसदों के सामने पेश किया। इसके मुताबिक मुलर को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले कि साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप या उनकी चुनाव टीम ने रूस के साथ कोई सांठगांठ की हो। हालांकि सवाल पर कि क्या ट्रंप ने न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की, मुलर ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। इस रिपोर्ट पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्हें गिराने की कोशिश नाकाम हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता भूमिका राय।
रविवार का दिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ राहत लेकर आया। अमेरिका में साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल की जांच कर रहे विशेष वकील रॉबर्ट मुलर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव अभियान टीम ने रूस से साठगांठ नहीं की थी। मुलर ने करीब 2 साल की जांच के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि सांसदों को सौंपे गए रिपोर्ट के सार में इस सवाल पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि क्या राष्ट्रपति ने न्यायिक प्रक्रिया में अवैध तरीके से बाधा पहुंचाने की कोशिश की थी। रिपोर्ट में इस सवाल पर राष्ट्रपति को पाक साफ नहीं बताया गया है। अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने कहा कि ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि राष्ट्रपति ने न्याय में बाधा पहुंचाने का अपराध किया है। जैसे ही रिपोर्ट की बातें सार्वजनिक हुई, ट्रंप ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोई मिलीभगत नहीं, कोई बाधा नहीं, संपूर्ण तरीके से दोष मुक्त। इसके बाद वो पत्रकारों से भी मुखातिब हुए और उन्होंने कहा,
It was just announced. There was no collusion with Russia. The most ridiculous thing I've ever heard.
बस अभी अभी इस बात की घोषणा हुई है कि रूस के साथ कोई मिलीभगत नहीं थी। मैंने आज तक बहुत से आरोप और इस तरह की बातें सुनी थी, लेकिन ये उनमें सबसे निम्नतम दर्जे की बात थी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, पूरी तरह से दोष मुक्त। सांसदों के समक्ष रिपोर्ट का सार रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विशेष वकील ने ये नहीं पाया है कि किसी अमरीकी नागरिक या फिर ट्रंप के अभियान से जुड़े अधिकारियों ने साजिश की या फिर जानबूझकर रूस के साथ साझेदारी की। इसके दूसरे हिस्से में न्याय में बाधा डालने के मुद्दे पर जानकारी दी गई है। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने सांसदों से कहा कि वो इस रिपोर्ट से जुड़ी और भी जानकारियां जल्द ही जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें नहीं बताया जा सकता। राष्ट्रपति ट्रंप के वकील रूडी जुलियानी ने इस रिपोर्ट को सोच से बेहतर बताया है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने कहा है कि रिपोर्ट ने राष्ट्रपति को पूरी तरह से दोषमुक्त बताया है। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जेरी नाडलर का कहना है कि जांच के बाद तैयार की गई इस रिपोर्ट को जनता के सामने रखा जाए, पारदर्शिता होना जरूरी है। उन्होंने कहा,
The Department of Justice believes that it cannot under any circumstances indict a sitting president, no matter
उन्होंने दावा किया कि कुछ न कुछ मिलीभगत जरूर थी। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है कि ट्रंप ने न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की हो। एक और जहां कुछ नेता अभी भी संदेह जाहिर कर रहे हैं, वहीं इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है।
रिपोर्ट सुना रही थी बीबीसी संवाददाता भूमिका राय। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2 हिंदू लड़कियों की कथित तौर पर जबरन शादी कराने के मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये मामला पाकिस्तान के सिंध प्रांत का है। अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ है, हमारे साथी आदर्श राठौर ने ये सवाल किया पाकिस्तान में मौजूद बीबीसी संवाददाता मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी से।
ये दरअसल 2 हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली 2 लड़कियां हैं जो अभी जिनकी उम्रें 18 साल से ऊपर नहीं है, तो इनको बच्चियां ही तस्वर किया जा रहा है, माइनर तस्वर किया जा रहा है। ये मामला सामने आया था होली वाले दिन और ये कहा जा रहा है कि जो FIR दर्ज कराई गई है दोनों बच्चियों के घर वालों की तरफ से, उसमें कहा गया है कि होली के दिन कुछ लोग घर में घुसे इनके और इन दो बच्चियों को उठा करके ले गए अपने साथ। और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक उन्होंने उनका मजहब तब्दील करके, क्योंकि ये हिंदू थी, उनको मुसलमान करके और शादी कर ली है। ये मामला होली वाले दिन शुरू हुआ है।
جی, اس کے بعد اس طرح کے بھی دعوے کیے گئے کہ جو دونوں لڑکیاں ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے, اور اس کو لے کے کافی ہنگامہ بھی ہوا.
جی, وہ ہوا یہ کہ اس کے بعد جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے پولیس میں کمپلین جب کرائی ہے, ایف آئی آر درج کرائی, اور یہ بات سامنے آئی کہ اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو اس کے بعد ہی کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایک نیوز کانفرنس کی ان دو لڑکیوں نے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ, اور ایک جو تھے وہ قاضی صاحب تھے یا ان کو کہیں امام مسجد تھے, ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی, جس میں بہت زیادہ تو نہیں لیکن کچھ میڈیا کے آؤٹلیٹس تھے, جس میں انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے شادی کی اور ہم نے اپنی مرضی سے اپنا مذہب تبدیل کیا اور اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں. لیکن کیونکہ یہ مائنر ہیں اور پاکستانی حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ جو کم عمر یہ لڑکیاں ہیں, تو جن کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیا جا سکتا, تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنا مذہب چینج کر لیا ہے. تو اس کے اوپر پہلے تو پاکستان ہندو کونسل کے جو سربراہ ہیں رمیش کمار واگوانی, وہ اس وقت جو گورننگ جو ہماری حکومت ہے اس کے ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں, انہوں نے پہلے اس کے اوپر احتجاج کیا اپنے پلیٹ فارم سے, اور اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ فوری طور پر ان بچیوں کو بازیاب کرایا جائے اور جو بھی واقعات ہے اس کی تحقیقات کرائی جائے. ایک آخری چیز جو میں مینشن کروں کہ پاکستان میں قانون ہے, خاص طور پر صوبہ سندھ میں جہاں سے یہ اغوا ہوئی ہیں, یہ قانون ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے, کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو اگر ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو یہ قانون یہ کہتا ہے کہ ان بچیوں کو, ان لڑکیوں کو, اگر وہ بالغ ہیں تبھی پر بھی یا نابالغ ہیں جب بھی, ایک مہینے کے لیے ان کے گھر پہ چھوڑا جائے گا, تاکہ وہ اگر کسی دباؤ میں ہیں یا کسی مطلب کسی خاص دھمکی کا یا دباؤ کا شکار ہیں, تو وہ اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو ریکنسیلیٹ کر لیں, اور اس کے بعد وہ میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیں کہ یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا, اور اس کے بعد پھر وہ جا سکیں. لیکن اس کیس کے اندر ایسا ہوا نہیں ہے, تو جو اتھارٹیز ہیں وہ یہی چاہ رہی ہیں کہ وہ بازیاب کرا کے ان لڑکیوں کو, اور ایک مہینہ ان کے گھر پہ چھوڑا جائے, اور اس کے بعد پھر ان کی مرضی معلوم کی جائے.
جانکاری دے رہے تھے بی بی سی سمباد داتا محمد عبداللہ فاروقی. اس معاملے پر بھارتی ودیش منتری سشما سوراج اور پاکستان کے سوچنا منتری فواد چودھری کے بیچ ٹویٹر پر نوک جھونک بھی ہوئی. دونوں دیشوں کے نیتاؤں نے کیا کچھ کہا آپ جاننا چاہتے ہیں تو آئیں بی بی سی ہندی ڈاٹ کام پر. وہیں پاکستان کی سترداری پی ٹی آئی کے ہندو سانسد رمیش کمار نے اس معاملے کو اٹھانے میں اہم بھومکا نبھائی. اسلام آباد میں موجود بی بی سی اردو سنواد داتا امید ملک نے سانسد رمیش کمار سے بات کی اور پاکستان میں الپ سنکھیوں کی استھتی کے بارے میں سوال کیا.
میں سمجھتا ہوں سارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ان 70 سالوں کے اندر 23% جو مائنارٹیز کی پاپولیشن تھی پاکستان کے اندر, جو اب 5% رہ گئی ہے. کیوں, ان کی وجوہات کیا ہے؟ فورسڈ کنورژن کا ایشو آج کا نہیں ہے, یہ ماضی سے چلتا آ رہا ہے فورسڈ کنورژن کا ایشو. میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کے اوپر اسٹرانگ لیجسلیشن ہونی چاہیے. وہ ایکسٹریمسٹ جو اس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہیں, اسپیشلی سندھ کے اندر میاں مٹھو برچنڈی شریف سے اور پیر ایوب جان سرندی سامارو سے, ہر 16 سال 14 سال 13 سال کی بچی آتی ہے اغوا کر کے. کوئی بھی بچہ اگر ان کے پاس لے کے آتے ہیں, ان کو ڈرا دھمکا کے کلمہ پڑھا کے وہ کہتے ہیں مسلمان ہو گئی, آج کی آپ کی شادی ہو گئی, اس کو پیسے دیتے ہیں, آپ جا کے کسی سیف جگہ پہ چلے جاؤ, کورٹ میں اسٹیٹمنٹ کرا دیتے ہیں. لڑکی ہوتی ہے گھوٹکی کی تو اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے رحیم یار خان میں, یا اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے بھاولپور میں, یا اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کراچی میں. واٹ از دس, یہ کب چیزیں ختم ہوں گی؟ یہ 21ویں صدی میں ہم آگے ہیں, ابھی تک ہم سدھریں گے نہیں ان چیزوں سے. ہمیں نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کی ہم نے بہت زیادہ تعریفیں کی, کیا اس ہفتے ہم نے ہمیں جو سکھایا کیا اس سے ہم کچھ سیکھے؟
انڈیا کی جو وزیر خارجہ ہیں سشما سوراج, ان کا ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے انڈین ہائی کمیشن جو پاکستان میں ہے اس سے ایک رپورٹ طلب کی. اسی پر پھر پاکستان کی جانب سے فواد چودھری کا بھی ٹویٹ سامنے آیا کہ جو یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس پر وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے.
اس کے اوپر یہ بات کروں گا, بالکل پاکستان کا مائنارٹیز کے ساتھ ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں, اور یہ ہر ملک کا مائنارٹیز کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرنا ہے وہ اس کا انٹرنل میٹرز ہے. اس وجہ سے دوسرے ملک کو اس ملک میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور یہ کل ہی مہاتیر مامن نے بات کی ہے کہ کسی ملک کو, اور میں سمجھتا ہوں انڈین میٹر میں پاکستان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, پاکستان کے میٹر میں انڈیا کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, مگر کوئی اگر کسی کے ساتھ ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو دیں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. وقت آ گیا ہے, یہ جو لانگ اویٹیڈ ایشوز ہیں وہ بھی حل کی طرف جانے چاہیے.
یہ تھے پاکستان کے سانسد رمیش کمار. رخ بھارت کا اور خبر بہار کی. बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है। बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सीपीआई ने उनके मुकाबले जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उतारने का ऐलान किया है। लेकिन क्या कन्हैया की उम्मीदवारी विपक्ष की चुनौती को कमजोर नहीं करेगी? हमारे साथी नीरज प्रियदर्शी ने सीपीआई और कन्हैया से किया ये सवाल, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
They officially announced Mr. Kannaiya as a candidate for Begusarai from CPI. And the remaining seats we discussed here and our state secretary Satyanand Singh will...
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने यह तय किया है कि लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार बेगूसराय से लिफ्ट के उम्मीदवार होंगे। इसकी औपचारिक घोषणा करने के बाद सीपीआई के वरिष्ठ नेता कॉमरेड नारायणा ने प्रेस वार्ता में यह कहते हुए अपनी बात पूरी की कि महागठबंधन में उन्हें उम्मीदों के अनुरूप सीटें नहीं मिली, फिर भी वे भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसलिए जिन सीटों पर वामदलों के उम्मीदवार नहीं खड़े होंगे उन पर भी वे महागठबंधन के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देंगे। और जैसे ही कॉमरेड नारायणा का बोलना खत्म हुआ, वार्ता में मौजूद पत्रकारों के सवालों के बौछार होने लगे। एक सवाल जो सबसे कॉमन था वो ये कि आखिर बेगूसराय सीट पर, जहां से पहले ही पार्टी की राज्य इकाई ने कन्हैया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, वहां पर राजद से बात क्यों नहीं बन पाई। इसी में बात तेजस्वी यादव की भी आई कि क्या तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि कन्हैया राजनीति में आए। जवाब वहां मौजूद खुद कन्हैया कुमार ने दिया।
उनकी भी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उनके अपने राजनीतिक गुना गणित हैं। अब वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए।
बीबीसी के बोले बिहार कार्यक्रम में कन्हैया ने कहा था कि वे भाजपा के खिलाफ पड़ने वाले वोटों को बिखरने नहीं देंगे, लेकिन अब का सच यही है कि राजद के उम्मीदवार तनवीर हसन के रहने से वोटों में बिखराव होगा। हमने सवाल किया, अब वे इस बिखराव को कैसे रोकेंगे? कन्हैया ने कहा,
वो राजनीतिक दल जब कोई राजनीतिक समीकरण बनाते हैं तो वो वोटों का हिसाब किताब लगाते हैं। वोटों के हिसाब किताब में एक्चुअली अगर पिछले दो चुनाव को आप देखेंगे, 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2015 का विधानसभा का चुनाव, यह चुनाव बिल्कुल पोलराइज्ड तरीके से हुआ और पोलराइज्ड तरीके से होने की वजह से लोगों के जो विभिन्न पार्टियों के अपने वोट थे वो वोट भी दूसरे दल को हराने के लिए शिफ्ट किया। हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो लेफ्ट पार्टी के पास जितना वोट शेयर है उस वोट शेयर को यदि हम कैलकुलेट करें वो सोच रहे हो शायद, ये मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये सवाल आप उनसे पूछिए। वो वोट शेयर शायद उनको इतना सिग्निफिकेंट नहीं लगता हो कि ये वोट यदि हमारे साथ नहीं भी होगा तो हमको सीटों का नुकसान नहीं होगा।
करीब घंटे भर से अधिक चली प्रेस वार्ता के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि सीपीआई अपने सहयोगी दलों सीपीआई माले और सीपीआई मार्क्सवादी के समर्थन में रहेगी। कन्हैया को मिला दें तो वाम दलों द्वारा अभी तक कुल 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा की जा चुकी है। नीरज प्रियदर्शी, बीबीसी पटना।
और अब बात अखबारों की। अखबारों ने किन खबरों को सुर्खियों में जगह दी है बताने के लिए मौजूद हैं भूमिका राय। जी भूमिका
जी, वात्सल्य, सबसे चुनाव का माहौल है तो चुनावी खबरें आजकल पहले पन्ने पे और लगभग हर पन्ने पे हैं। तो सबसे बड़ी चुनावी खबर ये है कि अखिलेश यादव जो हैं वो आज़मगढ़ से अब चुनाव लड़ेंगे और फिलहाल वहाँ से सांसद हैं उनके पिताजी, और लेकिन अभी इस बार उन्हें मैनपुरी से टिकट दिया गया है। तो ये आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर है जो पहले पन्ने पर है। इसके अलावा अगर बात करें तो पुलवामा हमला जो था, जो 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था, उससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। द हिंदू अखबार ने इस खबर को छापा है। अखबार लिखता है कि इस हमले में वर्चुअल सिम का इस्तेमाल किया गया था, तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। और ये वर्चुअल सिम जो है वो अमेरिका में बना था और अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के सिम का प्रयोग जैश के आत्मघाती हमलावर और कश्मीर और पाकिस्तान के उसके हैंडलर के बीच जो बातचीत हो रही थी इस वर्चुअल सिम के थ्रू हो रही थी। तो ये एक अहम जानकारी आई है पुलवामा हमले से जुड़ी हुई। भारत ने अमेरिका से इसमें और अधिक जानकारी के लिए बात करनी शुरू कर दी है। दैनिक हिंदुस्तान अखबार की बात करें तो अखबार लिखता है कि कर्ज के संकट से जूझ रहे BSNL और MTNL की बिजली कटने की नौबत आ गई है। BSNL के MD अनुपम श्रीवास्तव यादव के हवाले से अखबार लिखता है कि बकाए में से जो 90% है वो भुगतान कर दिया गया है और अभी बाकी जो है वो 15-20 दिन के अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर भुगतान नहीं होगा तो बिजली कट सकती है। इसके अलावा नवभारत टाइम्स ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि आग की वजह से एम्स ट्रॉमा सेंटर का ऑपरेशन थिएटर शटडाउन हो गया है। सभी 5 ऑपरेशन थिएटर आग की वजह से प्रभावित हैं और ट्रॉमा सेंटर ने पहले से मौजूद मरीजों को तो अपने यहाँ अलग अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया, लेकिन किसी भी बाहरी मरीज को वो नहीं ले रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर का जिक्र करते चलें कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद और उनके 6 सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। तो ये थी आज के अखबारों की।
जी बहुत शुक्रिया भूमिका राय अखबारों की समीक्षा के लिए। आज सोमवार है और आपको इंतजार होता है पाकिस्तान डायरी का, तो सुनिए वस्तुल्ला खान को।
लीजिए जनाब, पाकिस्तान में मोदी का एक और यार पैदा हो गया और इसका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। उनके और उनके अब्बा और फुप्पी के खिलाफ आजकल भ्रष्टाचार और बेनामी अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए गतरबूत करने के केसेस खोल दिए गए हैं। इसके बाद बिलावल की तोपों का रुख इमरान खान सरकार की तरफ मुड़ना तो बनता है। चुनांचे बिलावल ने पहला गोला ये दागा कि मंत्रिमंडल के कम से कम जो 3 सदस्य उग्रवादी गुटों के साथ टांका फिट किए बैठे हैं उन्हें फौरन मंडल से निकाला जाए। दूसरा गोला ये दागा कि उन्हें यकीन नहीं कि सरकार अतिवाद और जहादी संगठनों पर ईमानदारी से हाथ डाल रही है। बस फिर क्या था, इमरानी तोपें भी हरकत में आ गईं और अब कई मंत्री कोरस में गा रहे हैं कि बिलावल की ऐसी बातों के बाद इंडियन मीडिया एक टांग पे नाच रहा है। हाँ, ये क्या हो गया? जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे तो जो लोग उन्हें मोदी का यार कह रहे थे उनमें बिलावल भी सबसे आगे आगे थे। अब यही गीतमाला खुद बिलावल के गले में पड़ गई। अभी एक हफ्ते पहले ही तो मोदी के नए यार ने मोदी के पुराने यार से जेल में मुलाकात की है। मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ ने इस बालक को सिर्फ गौर से देखा होगा, मुंह से कुछ ना कहा होगा। कुछ यही कहानी सीमा पार की भी है। वैसे भी पाकिस्तान भारतीयों के किसी काम का हो ना हो, मगर चुनाव में अक्सर पाकिस्तान ही काम आता है। यहाँ बिलावल मोदी के नए यार हैं तो वहाँ राहुल पाकिस्तान के यार कहे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह बिलावल ने अतिवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई पे सवाल उठा दिया है, उसी तरह राहुल ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स पे सवाल उठा दिया है। मगर राहुल अकेले थोड़ी हैं। जब से मोदी ने 23 मार्च के राष्ट्रीय दिवस पे इमरान खान को बधाई दी है, तब से कांग्रेस की नज़रों में मोदी भी ये लव लेटर लिखने के बाद पाकिस्तान के यार हो चुके हैं। पर एक बात समझ में नहीं आई कि अगर राष्ट्रीय दिवस पे पाकिस्तान को बधाई दे ही दी थी तो फिर मोदी सरकार ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के रिसेप्शन का बायकॉट क्यों कर दिया? मोदी और राहुल पाकिस्तान के यार और नवाज शरीफ और बिलावल भारत के यार, तो फिर झगड़ा किस बात पे है? कैसी अच्छी बात है कि बुरे वक्त में दोनों देशों के नेता ही एक दूसरे से यारी निभाते हैं और मूर्ख दुनिया समझती है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। खैर, दुनिया का क्या है, वो तो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की कुश्तियों को भी असली समझती है।
वुजत साहब की पाकिस्तान डायरी पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और अब खेल का साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। IPL 12 में कल 2 मुकाबले खेले गए, जहां पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन्स में हैदराबाद का सूरज 6 विकेट से डुबो दिया। कोलकाता के सामने जीत के लिए 181 रनों का लक्ष्य था, जो उसने नीतीश राणा के 68 और आंद्रे रसेल के 19 गेंदों पर बनाए गए धुआंधार नाबाद 49 रनों की मदद से 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर हैदराबाद ने डेविड वार्नर के तूफानी 85 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 181 रन बनाए थे। कल ही खेले गए दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत के नाबाद 78 रनों की मदद से पहले तो 6 विकेट खोकर 213 रन बनाए और उसके बाद मुंबई इंडियंस को 176 रनों पर समेटकर 37 रन से जीत हासिल की। और अब समीक्षा। विश्व कप से पहले आखिरी एक दिवसीय सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने किया पलटवार, अपने ही घर में भारत को मिली हार, अब आईपीएल में खुद को रखना होगा संभाल कर।
No one will be forced to do something, but eventually everyone knows no one wants to miss the bus to the World Cup and cost the Indian team good balance and accordingly everyone will take their IPL campaigns forward.
किसी पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ विश्व कप के लिए किसी की बस ना छूट जाए और उससे भारतीय टीम का संतुलन बिगड़ ना जाए, इसी को ध्यान में रखकर सबको आईपीएल के अभियान को शुरू करना चाहिए। ये कहना है भारत के कप्तान विराट कोहली का, जो अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया से 2020 और एक दिवसीय सीरीज में मिली हार से शायद चिंतित हो गए हैं। अब आईपीएल तो शनिवार से शुरू हो चुका है। खुद कप्तान विराट कोहली, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने के लिए जी जान लगा देंगे। बाकी खिलाड़ी भी विश्व कप में अपनी दावेदारी बनाए रखने, बचाए रखने और कुछ पेश करने से भला कैसे पीछे रहेंगे। फॉर्म में भी रहो, फिट भी रहो। क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली इस पहेली का हल बताते हैं।
खिलाड़ी को भी मालूम है, जोर लगाएगा, आईपीएल से भी वंचित होगा और फिर वर्ल्ड कप की जगह जाएगी। डेफिनेटली फ्रेंचाइजी भी इसमें नहीं चाहेंगे कि उनका खिलाड़ी भारत की वर्ल्ड कप चांसेस खराब कर दे इंजर्ड होके, वो भी बात करेंगे प्लेयरों से।
वैसे पिछले दो साल से भारतीय टीम विश्व कप के लिए ही तैयारी में जुटी रही। कप्तान विराट कोहली जानते हैं कि आखिरी 11 खिलाड़ी कौन से होंगे।
पता है हमको कहाँ जाना है वर्ल्ड कप में एज अ कॉम्बिनेशन। 11 जो है हमारी काफी क्लियर है अपने दिमाग में, जस्ट दैट हमको अच्छे डिसीजंस लेने होंगे प्रेशर सिचुएशंस में।
चलो 11 खिलाड़ी पक्के, लेकिन विश्व कप में जाएंगे तो 15 खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार से पहले वो भी लगभग तय थे, लेकिन अब तो किंतु परंतु शुरू हो गए हैं। विजय लोकपल्ली कहते हैं,
किस टाइप के बॉलर्स, किस टाइप के बैट्समैन, नंबर 4 पे कौन बैटिंग करेगा, ओपनर्स आपके तो हैं तय, और ओपनर्स किस फॉर्म में बैटिंग करेंगे वो तो वर्ल्ड कप में जाके मालूम पड़ेगा। पर 15 जब तक हम नहीं चुनते हैं तब तक बहुत ज्यादा हमको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है।
नंबर 4 पर कौन खेले तय नहीं, और ऋषभ पंत को लगातार मौके मिले लेकिन वो भी भरोसे पर खरा नहीं उतरे। खैर, ऋषभ पंत ने कल आईपीएल में नाबाद 78 रन ठोककर बल्लेबाजी में तो जलवा दिखा दिया, लेकिन विकेट कीपिंग भी तो सुधारनी होगी। उन्हें लेकर बेबसी भरा जवाब दिया शिखर धवन ने, जब भारत 350 रनों से ज्यादा का बचाव भी नहीं कर सका।
धोनी भाई ने तो कितने गेम्स खेले, कितने सालों से खेले, तो कंपेयर तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। और ऑफकोर्स अगर उस वक्त स्टंपिंग होती तो गेम बदल सकती थी, वो एक अच्छा उस वक्त चांस था।
अब समस्या यहाँ भी दूसरा विकेट कीपर कौन हो, दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत। यहाँ तो विजय लोकपल्ली भी चयनकर्ताओं पर जवाब छोड़ देते हैं।
ऋषभ पंत कुछ मैचों में ठीक नहीं हुई उनसे विकेट कीपिंग, तो ये मानना गलत होगा कि वो खराब कीपर है। लेकिन आपने एक बात सही कही, सेकेंड विकेट कीपर कौन है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। एक हमको मालूम है धोनी, लेकिन दूसरा दिनेश कार्तिक होंगे या ऋषभ पंत होंगे, ये तो टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे।
उधर मलेशिया के इपोह शहर में खेले जा रहे सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में कल भारत और दक्षिण कोरिया 1-1 से बराबरी पर रहे। इससे पहले भारत ने अपने पहले मैच में जापान को 2-0 से हराया था। आज भारत का सामना मेजबान मलेशिया से होगा। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और अब चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल की जांच कर रहे विशेष वकील रॉबर्ट मुलर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव अभियान टीम की रूस से कोई मिलीभगत नहीं थी। पाकिस्तान में दो हिंदू लड़कियों को अगवा करा के शादी कराने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। थाईलैंड में साल 2014 में तख्तापलट के बाद पहली बार मतदान हुए। चुनाव में करीब 5 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तूफान के बाद मोजाम्बिक में अब खतरनाक और जानलेवा बीमारियों के होने का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। किन्या के एक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक को साल 2019 का ग्लोबल टीचर खिताब दिया गया है। इस सम्मान के साथ ही उन्हें करीब 7 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि भी दी गई है। फ्लोरिडा के जिस स्कूल में पिछले साल 17 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसी स्कूल के दो छात्रों ने एक सप्ताह के भीतर खुदकुशी कर ली है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजित सारथी। आपसे अगली मुलाकात शाम के वक्त 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।